आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर 2 घंटे लंबी फोन पर बातचीत की, जिसे दोनों नेताओं ने रचनात्मक बताया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम की दिशा में प्रगति हुई है, जबकि पुतिन ने पुष्टि की कि रूस शांति वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने इस बातचीत के पहले और बाद की जानकारी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दी, मगर उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन की भागीदारी और बिना किसी क्षेत्रीय समझौते के कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर 2 घंटे लंबी फोन पर बातचीत की, जिसे दोनों नेताओं ने रचनात्मक बताया।
We just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin, and I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing wrapped up.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युद्ध विराम समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका पीछे हटेगा।
I think something is going to happen. It's a very very big egos involved, I tell you. Big egos involved, but I think something's going to happen, and if it doesn't, I just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Should have remained. But we have, because the past administration felt very strongly that we should be involved, and we got involved much more than Europe did in terms of the money.
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम वार्ताएं शुरू करेंगे। वहीं सोची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुतिन ने इस कॉल की पुष्टि की और शांति वार्ताओं को फिर से शुरू करने के समर्थन के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया।
The conversation indeed took place and lasted more than 2 hours. I would like to note that it was very informative and very frank. And overall, in my view, very useful in this regard. First, I thank the President of the United States for the support of the United States in the resumption of direct negotiations between Russia and Ukraine on a possible peace agreement, on the resumption of negotiations that were interrupted by the Ukrainian side, as you know, back in 2022.
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस भविष्य के शांति समझौते के लिए ज्ञापन पर यूक्रेन के साथ काम करने को तैयार है, जिसमें समाधान के सिद्धांत और युद्ध विराम की शर्तें शामिल होंगी।
प्रेसिडेंट संयुक्त राष्ट्र высказал свою позицию.
The US President has expressed his position on the ceasefire, and I, for my part, also noted that Russia also favors a peaceful settlement of the Ukrainian crisis. We agreed with the US President that Russia will suggest and is ready to work with the Ukrainian side on a memorandum on a possible future peace treaty, which defines a number of issues such as the principles of settlement, the terms of the possible peace agreement, and so on, including a possible ceasefire for a certain period of time if the appropriate agreements are reached.
क्रेमलिन के एक सलाहकार ने बताया कि बातचीत में कैदियों की अदला बदली का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन युद्ध विराम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुष्टि की कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत से पहले और बाद की जानकारी दी थी।
I had 2 calls with President Trump today in different formats. The first one was that we talked about the fact that a ceasefire is very important for Ukraine. These are, in principle, unconditional things that we discussed in Istanbul and constantly before that. I asked him before his conversation with Putin not to make decisions about Ukraine without us. And for us, these are matters of principle and very important. We agreed that we would get in touch after his conversation with Putin.
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनी सेनाओं को अपने ही क्षेत्र से पीछे हटाने की किसी भी सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया है।
No one will be pulling our troops out of our own territory. It is my constitutional duty, it is the duty of our military to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. If Russia sets conditions for withdrawing our troops from our own land, it means they don't want a ceasefire and they don't want the war to end, because they clearly understand that Ukraine won't do that.
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस अमेरिका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन पर चर्चा चल रही है जिसकी मेजबानी तुर्की या फिर स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हो सकती है। इसी बीच यूरी उशाकोव जो कि क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार हैं ने पुष्टि की कि आवश्यक तैयारियां पूर्ण होने पर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच आमने सामने की बैठक भी हो सकती है।
It is very important that both presidents agreed to continue the dialogue on all the issues raised, including, of course, on the Ukrainian issue, and they keep in mind the possibility of organizing a personal meeting in the future. But it is necessary to create the necessary conditions for this, and both presidents agree that such a meeting should be well and comprehensively prepared. It needs to be carefully worked out, and such instructions will be given to the appropriate teams.
उशाकोव ने बताया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को पहले नाम से संबोधित किया।
In the context of such a frank and friendly exchange of views, the presidents agreed that they would call each other as needed. So Trump said, Vladimir, you can pick up the phone at any time. I'll be happy to answer. I'll be happy to talk to you. This ending of the phone call also characterizes the nature of the conversation that took place between the leaders.
युद्धविराम की तिथि पर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट में प्रस्तावित एक प्रतिबंध विधेयक का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे दंड की बजाय बातचीत को प्राथमिकता देते हैं।
Trump mentioned that in principle, a bill on new sanctions was ready in the Senate, but he himself was not a supporter of sanctions, but a supporter of reaching specific agreements.
इस पूरे मुद्दे पर विशेषज्ञ डॉक्टर दलबीर अलावत का कहना था,
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये जो ब्लड बात है ये ब्लड बात बंद होना चाहिए। उसके लिए जैसा कि आपने कहा कि कल दो घंटे से भी ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बात हुई, और जो बातों के बाद जो एक वो सिग्नल जो मिल रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव लगते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। देखिए, इसमें क्या है कि राष्ट्र जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, और उन कंडीशंस में जो दो मेन कंडीशंस हैं, पहली ये है कि कोई भी डील यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर फाइनल नहीं होनी चाहिए, मींस यूक्रेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए
जी।
उसकी सहमति से ये कोई भी डील हो तो वो हो। और जो दूसरी जो की और जो अहम जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी से नहीं हटेगा, वापस नहीं हटेगा, ये रिट्रीट नहीं करेगा। तो ये जो सेकंड और जो कंडीशन है ये नॉन नेगोशिएबल लगती है, जो इसकी लैंग्वेज और टोन है उससे। अब सवाल उठता है कि रशिया ने यूक्रेन की 20% जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्या रशिया पीछे हटेगा? हमने एग्जांपल्स देखे हैं दूसरी जगह जो कि वॉर टाइप सिचुएशन है, उनमें शांति की संधियां हुई हैं। पहला तो उसमें होता है कि स्टेटस को, जहां जिस देश की मिलिट्री है वहां उनके बीच में एक बॉर्डर खींच देते हैं, और वो दोनों देशों के बीच में जो ये लाइन आ गई ये दोनों कंट्रीज के लिए बाइंडिंग होती है। नंबर दो, गिव एंड टेक। काफी बार क्या होता है कि एक एरिया एक देश दूसरे को देता है, दूसरा उसको देता है, जिससे कि एक वो एक बॉर्डर सामने आता है, ये बॉर्डर ऑपरेशनल होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनल बॉर्डर नहीं है तो फिर बाद में कंफ्लिक्ट आती है। ये बॉर्डर फंक्शनल भी होना चाहिए, जिससे कि इसका दोनों कंट्रीज इसको आराम से मेंटेन कर सकें, इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकें। तो ये कुछ मेन बातें हैं। इन्हीं से अब जो दूसरे देश जो बीच में मल्टीपल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको स्टेप इस तरह से लेना पड़ेगा कि ये एक सस्टेनेबल बॉर्डर हो, और यूक्रेन को भी कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेगा और रशिया को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज से ये सॉल्व हो सकता है, जो अभी कंडीशंस हैं इनसे नहीं लगता कि रिजोल्व हो सकता है।
एक अलग घटनाक्रम में रूस ने यूक्रेन का समर्थन करने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टर दलबीर अलावत ने बताया कि रूस द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगाने का इस बातचीत पर या इन कोशिशों पर क्या प्रभाव हो सकता है।
इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है वो रशिया के अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि रशिया ने इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1961 से बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि ये एक तो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को देखता है, वार क्राइम्स को भी देखता है, और ये जो प्रिजनर्स होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनकी रिलीज के लिए काम करता है। लेकिन रशिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन का करार दिया है। इससे क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब एक तरह से बैन हो चुकी है, आउटला हो चुकी है रशिया में। ये इसमें जो दूसरे देश हैं इसको यूज कर सकते हैं रशिया के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ट अप करने के लिए, बट इन रियलिटी इससे रशिया के ऊपर विद इन रशिया कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वॉर टाइम पे काफी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, मीडिया सेंसरशिप भी होती है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके ऊपर भी बैन लगते हैं वॉर टाइम सिचुएशन में।
अब युद्ध विराम वार्ताएं फिर से शुरू होने वाली हैं और एक व्यापक शांति शिखर सम्मेलन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन अपनी स्थिति पर अडिग है। यूक्रेन का कहना है कि बिना प्रत्यक्ष भागीदारी के कोई समझौता नहीं और अपने ही क्षेत्र से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। SBS न्यूज से एसामल गालिब के साथ ये रिपोर्ट SBS हिंदी द्वारा पेश की गई है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।